शांति। मधुबन की इस ठंडी हवाओं में, प्यारे बाबा की भुजाओं में, जगदम्बा माँ की शीतल गोद में, बाबा के ब्राह्मण कुलभूषण नूरे रत्नों का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आर भट्टी के इस स्वागत सत्र में, सबसे पहले सेशन में, प्यारे बाबा का एक अनमोल रतन, उनके हस्तों से तराशा हुआ दिव्य मूर्ति, शक्ति स्वरूपा आदरणीय संतोष दीदी जी का हम जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत। बहुत भाग्यशाली हैं हरिनगर से आए हुए ब्राह्मण भाई बहने, जिनको आए सबसे पहले ऐसी अनुपम दिव्य मूर्ति का दर्शन और श्रवण मिलेगा, जिन्होंने अपने जीवन को बाबा के प्यार से ऐसा तपाया है, जो आपने बाबा के दिल में स्थान पाया है। आप हैं आदरणीय संतोष दीदी जी, महाराष्ट्र जोन इंचार्ज। आप वो परम सौभाग्यशाली आत्मा हैं जिनको प्रथम साक्षात्कार करने वाली आदरणीय दादी ब्रजेंद्रा जी, उनके बिल्कुल अंग संग रहने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और वो अनुभव और वो शक्तियां आपके जीवन में काम करती हैं। हमने देखा है दीदी को, कितना आप बाबा के नजदीक हैं, जितना स्नेही रूप हैं उतना शक्ति रूप हैं, जितना आपको स्व उन्नति से प्यार उतना ईश्वरीय सेवाओं से प्यार, देश विदेश के अनेकों ब्राह्मण भाई बहनों को आपने बाबा का बनने का कारण बने और उनको नया जन्म दिया। लाखों भाई बहने आपके गुणगान करते हैं। आप ब्रह्मा कुमारी का जो राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का सोशल सर्विस विंग है, आप उसके चेयरपर्सन हैं और सुचारू रूप से इस विंग को आपने बहुत उड़ाया है। आपके सानिध्य में आज हम इस भट्टी में आने का मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, और साथ साथ अमृत वेला, वरदानी वेला, यहाँ मधुबन भूमि पर कैसे उसका हम पूरा फायदा लें, ये आज आदरणीय दीदी जी से समझेंगे। आदरणीय संतोष दीदी जी।
ओम शांति। बेहद बाबा के घर में बेहद के बच्चे, हद से बेहद में जाने का पुरुषार्थ बहुत इजी कर सकते।
बड़ा करो ना भाई, थोड़ा।
वैसे तो बाबा के जो भी बच्चे हैं सब बाबा के योगी बच्चे, क्योंकि हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो मेन सब्जेक्ट है ज्ञान और योग, उसको जब तक पक्का नहीं किया है तब अब तब तक अपने को कोई भी गॉडली स्टूडेंट नहीं कहला सकता। इसीलिए आते ही जिस समय पर हम ब्राह्मणों का जन्म होता है तो बेहद का बाप हम सब बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को तीसरा ज्ञान का नेत्र बर्थडे की गिफ्ट देता है। जिस तीसरे नेत्र के द्वारा हम खुद को भी जान सकते हैं, अपने बाप को भी जान सकते हैं, घर के रास्ते को अच्छी रीति जान करके वहां की सैर भी कर सकते हैं। और जब बाप को जान लिया तो बाप के साथ साथ बाप के द्वारा जो वर्षा प्राप्त होता है उस वर्षे को भी अपना बनाने के लिए हम विशेष ध्यान देते हैं। वैसे तो बच्चा बनना अर्थात ही बाबा से वर्षा लेना, और जिस दिन से दिल से बाबा कहा बच्चों ने, बाबा ने भी उन बच्चों को सहर्ष स्वीकार कर ली। हम लोगों ने भक्ति मार्ग में उसको बहुत ढूंढा, बिगर एड्रेस ढूंढा, बिगर पहचान ढूंढा, इसीलिए क्या हुआ, मिला ही नहीं। मिलेगा कैसा, बिगर एड्रेस आप किसी को ढूंढेंगे तो कहां से मिलेंगे। परंतु बाबा ने हम बच्चों को एक सेकंड में ढूंढ के अपना बना लिया। वैसे भी आप देखेंगे तो लौकिक जीवन में भी किसके दो या चार बच्चे होते हैं तो उसको तो मालूम होता है ना, मेरा कौन सा बच्चा कहाँ रहता है, उनको तो यथार्थ परिचय होता। माँ बाप तो बरोबर जानते, तो बाबा भी हरेक बच्चे की जन्म पत्री को अच्छी तरह से जानते हैं। और हम कहाँ कहाँ छुपे हुए थे बाबा से बिछड़ करके, और उसको पाने की हमको कितनी लगन थी ये बाबा अच्छी रीत जानता है। इसीलिए हम बच्चों को बाबा ने अपना बना करके, कहा जाता है ठरी बैठी ठिकाने, जो इतना भटक रहे थे, दुखी हो रहे थे, उनको ठिकाना दे दिया। और ठिकाना भी आप देखो कहाँ दिया, अपने दिल तख्त के ऊपर बिठा दिया। नहीं तो भक्ति मार्ग में हम बहुत ज्यादा से ज्यादा हिम्मत करते थे, हमको नौकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर नहीं तो चूकर राखो, चलो हाँ। कृष्ण के लिए कहते थे ना, नौकर ही रख लो अपना। अच्छा, हमारे को अपना नौकर नहीं बना सकते, उसको भगवान समझ के पूछते थे ना, नौकर नहीं बना सकते तो नौकर का ना नौकर चाकर बना दो, चाकर भी नहीं बनाते तो चाकर का भी चूकर बना दो, कुछ तो बना दो। परंतु बाबा ने आकर के क्या किया, हम बच्चों को अपना वारस बना दिया। तो जिस समय हमें ये तीसरा ज्ञान का नेत्र मिला, नेत्र के द्वारा जब बाप की पहचान मिली और बाबा के वर्षे के हम हकदार बन गए। बाबा कहता है तुम्हारा बाबा कहना और बाबा का वर्षा तुम्हारे आगे छिमछिम होकर के आ जाना। क्योंकि छोटेपन में हम पढ़ते थे हातिम ताई और उसका खेल, कि हातिम ताई एक ऐसा चाबी घुमाता था सारे खजाने खुल जाते। बाबा ने भी अभी बच्चों को चाबी दिया है सर्व खजानों की। कौन सी चाबी है आपके पास, कौन सी चाबी है? मेरा बाप, मेरे बाबा की सबको चाबी मिली है। तो मेरे बाबा की जब चाबी मिल गई, चाबी अकेली नहीं रखी जाती है ना, अगर सिर्फ चाबी होगी तो कहां खो भी सकती है। तो चाबी को क्या करते हैं, चाबी को हमेशा कीचेन में डालते, की छोटी होती है उसकी चैन बड़ी होती है, तो की तो बाबा ने हमको दे दिया सर्व खजानों की, वो दिया मेरा बाबा, फिर चैन कौन सी दिया बताइए, कौन सी चैन मिली? सर्व संबंधों की चैन। सर्व संबंधों की चैन में अगर आपने की को बांध करके रखा, आपकी की कभी खो नहीं सकती, क्योंकि बाबा के साथ हम बच्चों के सर्व संबंध हैं। तुम्हें माता पिता बंधु सखा सर्व संबंध ए टू जेड, एक भी संबंध ऐसा नहीं है जिस संबंध की हम उससे रचना नहीं ले सकते, जिस संबंध की हम उससे प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, ऐसा एक भी संबंध नहीं। तो हमारे सर्व संबंध उस बाबा के साथ है। ये बाबा ने हम बच्चों को बड़ी चैन दे दिया, एक संबंध भूले तो दूसरा याद करो, दूसरा भूले तो तीसरा याद करो, जो आपको प्रिय लगे वो संबंध याद करो। तो जब जो प्रिय लगे वो संबंध याद करो तो अथा संबंध है। तो हमारी याद को बाबा ने निरंतर बनाने के लिए सर्व संबंधों की हम बच्चों को रचना दी, क्योंकि जब तक हम बाबा के साथ सर्व संबंध नहीं जोड़ते हैं तब तक नष्टो मोह नहीं बन सकते, और जब तक नष्टो मोह नहीं बन सकते तब तक स्मृति लब्धा नहीं बन सकती। अगर हमारा देह, देह की दुनिया, देह के संबंध, पुरानी दुनिया, पुराने संबंध, पुरानी बातें, पराई बातें अगर हमारी बुद्धि में होगी तो बाबा कहाँ बैठेगा बताओ, क्योंकि वो तो सच्चा हीरा है। तो उसको अपनी बुद्धि में बिठाने के लिए हमारी बुद्धि रूपी डब्बी भी इतनी अच्छी कीमती होनी चाहिए, तभी हम उसको संभाल करके रख सकते, अपने पास बिठा सकते। तो बाबा ने हम बच्चों को ये जो सर्व संबंधों की रचना लेना सिखाया, भले भक्ति मार्ग में हम गायन करते थे कि भगवान के साथ हमारे सर्व संबंध है, परंतु एक भी संबंध का अनुभव नहीं था, उसको भगवान और अपने को भगत समझ के चलते थे। पर अभी हरेक संबंध में कौन सी रचना है, कौन सी प्राप्ति है, बाबा कैसा हमारा माता है, कैसा पिता है, कैसा बंधु है, कैसा सखा है, इन सब की अनुभूतियां इस संगम युग पर एक ही बारी हम बाबा के द्वारा कर सकते। और जिसने एक बारी बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूतियां कर लिया, उसकी बुद्धि कभी भी कहां जा नहीं सकती, क्योंकि जब एक से ही सब कुछ मिलेगा तो कहां जाने की क्या जरूरत है। आजकल वैसा भी टाइम सबके पास शॉर्ट होता है, कोई भी सामान लेना होता है तो खास माल में जाते हैं, उधर सब कुछ मिलता है ना, एक ही जगह से सारी खरीदारी करें। तो बाबा कहता है तुम्हारे को जो भी प्राप्तियां चाहिए तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ और सर्व प्राप्तियां तुम मेरे से कर लो, तुम्हारे को कहां भी भटकने की आवश्यकता नहीं, किसी में भी आश रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा ये सर्व प्राप्तियां हमको कराता है, इसीलिए कहां जाने की जरूरत नहीं। तो आप लोग खास विशेष मधुबन तपोभूमि पर आए हैं, हर एक ब्राह्मण बच्चे को ये इच्छा रहती है कि हम खास, वैसे तो भट्टियों में नीचे भी आते हैं, परंतु ये जो साकार बाबा की कर्म भूमि है, मम्मा की कर्म भूमि है, हमारी दादियों की जो तपस्या भूमि है, इस तपस्या भूमि का हर एक को खींच होती, और आप खुद भी अनुभव करते हैं इस है के गेट के अंदर आते ही क्या होता है, बाबा के सारे चरित्र, बाबा की वो बातें, वो शांति और शक्ति जो है उसका अनुभव होना चालू हो जाता है। तो अभी जिस लक्ष्य से आप लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि जो भी आए हैं वो सब अपने कारोबार से निवृत्त होकर के आए हुए हैं, या किसी का है अभी तक कारोबार की तरफ बुद्धि, हाँ, इसीलिए बार बाबा बोलते थे तुम जो भी यहाँ आते हो ना, तुम्हारा जो संसार है वो गेट के बाहर ही छोड़ के आना, अंदर लेके नहीं आना। कभी कभी ऐसा होता है हम बैठे हुए होते हैं क्लास में, परंतु क्लास में नहीं होते, हमारी बुद्धि होती है घरों में, हमारी बुद्धि होती है धंधों में, तो सारी मार्केट को ही लेकर के जैसा यहाँ आके बैठ जाते हैं, सारे परिवार को ही यहाँ लेके आके बैठ जाते हैं, परंतु नहीं, जिस समय खास तपस्या करने के लिए आते हैं और लक्ष्य रखते हैं कि हमारे को पूरा पूरा अनुभव करना है, ये जो भी योग की भट्टियां की जाती है, वैसे तो हरेक, हमने कहा ना, हरेक बाबा का योगी बच्चा, हरेक कोई योग करता ही है, योग करता है इसीलिए तो योगी है ना, उसका बुद्धि का योग बाबा से लगा हुआ है, परंतु बुद्धि का योग लगा हुआ होते हुए भी कभी इधर उधर जो बुद्धि चली जाती है, लिंक कभी टूट जाती है, कभी अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है, वो हमारी अवस्था सदैव एक रस रहे और एक से ही हम सारे रस लेते रहे, उसके लिए खास संगठित योग जो है वो बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो हम अक्सर करके देखते हैं क्लासों में, बहुत करके मेजॉरिटी हमारे भाई बहने योग पूरा होने के बाद मुरली के समय पर आते, अभी उनके कोई ना कोई सरकमटेंस हो गए, दूर से आते हैं, घरों के कारोबार करके आते हैं, फिर ऑफिसेस में जाना होता है, माताओं को भी बहुत कारोबार होता है, तो इसीलिए क्या होता है, जितना योग में समय देना चाहिए उतना समय नहीं दे सकते, ऐसा नहीं कि कोई नहीं चाहता है, परंतु चाहते हुए भी ज्यादा समय स्पेयर नहीं कर सकते हैं, मुरली नहीं मिस करेंगे, परंतु योग तो फिर बाबा कहता है ना, बच्चे चलते फिरते याद कर लो, तो रास्ते में आते आते ही याद कर लेंगे, हाँ ऐसा हो जाता है, पर अभी रास्ते में आते आते याद करना, घर में बैठ करके याद करना, ऑफिस में कार्य व्यवहार के समय याद करना और एकाग्र होकर के बैठना, इसमें कितना फर्क, और उसमें से भी संगठित रूप में बैठना, इसमें बहुत फर्क होता है, क्योंकि संगठित रूप में जो वातावरण बनता है वो वातावरण एक अनोखा बनता है, क्योंकि इतने सब जो बैठे हुए होते हैं, देखो यही बहुत बड़ी विशेषता है हम लोगों के पास, बाबा के बच्चों के पास, बाबा के घर में आज देखो कितने लोग बैठे हैं, सारा हाल भरा हुआ है, परंतु सबको कौन याद है, एक ही बाबा याद है, दूसरे सत्संगों में ऐसा नहीं होता है, जितने लोग बैठे होंगे उतनों को याद करते हो, एक को नहीं याद कर सकते, तो यहाँ तो हम सब एक को ही याद करते हैं, क्योंकि हम सभी को ये पक्का है कि हम एक के हैं और एक के साथ हमारे सर्व संबंध है और सर्व प्राप्तियां भी हमको एक से ही होने वाली, तो जब हम सब इकट्ठे मिलकर के याद करते हैं तो वातावरण जो है वो बहुत पावरफुल बन जाता है, एक ही संकल्प होता है। वैसा भी आप देखेंगे कोई स्थूल कार्य, अगर कोई एक व्यक्ति बैठ करके कार्य करती है उसको कितना टाइम लगता है, कोई भी एक काम करने को मेरे को एक घंटा लगता है, परंतु अगर हम चार जनी मिलकर के करेगी तो कितना समय लगेगा, जल्दी हो जाएगा ना, 15 मिनट में हो जाएगा, तो उसी प्रकार वातावरण बनाने में, एक अगर बैठ करके वातावरण बनाने की कोशिश करता है तो इतना नहीं बना सकता, परंतु जब संगठित रूप में एक ही संकल्प लेकर के एकाग्र होके जब हम सब बैठते हैं तो योग की ज्वाला जो है वो क्या होती है, प्रज्वलित होती है, उसकी जो शीतलता है वैसी जो भी ज्वालाएं हैं, ज्वाला से गर्माश आती है, परंतु योग की ज्वाला ये ऐसी ज्वाला है जिस ज्वाला के द्वारा शीतलता मिलती है। तो जब सब मिलकर के हम बैठ करके इकट्ठे योग करते हैं तो
तो उससे क्या होता है, वातावरण पावरफुल बनता है और हमको वातावरण का सहयोग मिलता है। आपस में भी एक दो का सहयोग मिलता है, वातावरण का भी सहयोग मिलता है और निश्चिंत तो होकर के बैठते, इसीलिए बुद्धि यहाँ वहां नहीं जाती। तो इसीलिए खास बीच बीच में हम देखते हैं, जैसा नहीं चलते चलते मोबाइल जो है उसको चार्ज किया जाता है ना, हरेक कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको चार्ज करते हैं, तो ये भी आत्मा रूपी बैटरी बीच बीच में चार्ज करनी होती है। तो जिस समय चार्ज, वैसे तो चलती रहती है वो बैटरी, परंतु जरा डल हो जाती है, चलते चलते कभी अपने ऊपर अटेंशन कमती हो जाता है, परंतु फिर जब ऐसे संगठित रूप के प्रोग्राम बनते हैं तो वापस क्या होता है, वही उमंग वही उत्साह, और वापस हमारी बैटरी क्या हो जाती, पावरफुल हो जाती। तो जरूर क्या होता है, जिस समय पर हमारे को शक्ति मिलती है, जिस समय ज्ञान का ज्यादा प्रकाश मिलता है, तो उससे जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, क्योंकि हमारा मार्ग जो है वो शुद्ध पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। औरों ने तो घर बार छोड़ना सिखाया, बाबा ने घर बार छोड़ना नहीं सिखाया, बाबा ने घर ग्रस्त में रहते हुए उससे निवृत्त रहना सीखा, हमारी वृत्ति को बाबा ने चेंज कर डाला, वैराग वृत्ति हमारे अंदर पैदा किया, उपराम वृत्ति हमारे अंदर पैदा किया, आत्मिक वृत्ति हमारे अंदर पैदा किया, बाबा ने ये सारा कार्य किया। तो इसीलिए वो वैराग वृत्ति अपने अंदर सदैव बनी रहे, संसार में रहे पर संसार हमारे अंदर नहीं रहे। संसार में रहते हैं, जैसा देखो नाव है, नाव जो है वो पानी पर चलती है, उसी को ही नाव कहते हैं ना, रस्ते पर चलेगी उसको थोड़ी नाव कहेंगे। तो नाव पानी पर चलती है, परंतु अगर उस नाव में पानी आ जाता है तो क्या होता है, डूब जाता है। तो उसी प्रकार हम संसार में रहते हैं, भव सागर में रहते हैं, परंतु उसमें रहते हुए उससे अगर न्यारा रहते हैं तो भवसागर पार हो जाता, और अगर चलते चलते वो भवसागर यहाँ आके बैठ जाता है तो क्या हो जाते, डूब तो नहीं बोलो थोड़े गुटके खा लेते हैं फिर खाने वाले बाबा डूबने नहीं देता है। देखो बाबा का बच्चों के साथ बहुत प्यार है, वो बच्चों को कभी डूबने नहीं देगा, देखेगा जा रहा है, अरे इतना प्यार कौन करेगा बताओ तो सही, देखेगा जा रहा है, कोई हाथ भी छोड़ के जाता है ना उसके पीछे पीछे घूमता रहता है, चलो बच्चे चलो कहाँ जा रहे हो चलो, क्योंकि उसका बहुत प्यार। वैसे बाबा देखे देखो प्यार का सागर है, उसका सबके साथ प्यार है, चाहे ज्ञानी होवे चाहे अज्ञानी होवे, बच्चे है ना उसके प्यार है, तभी तो हमें इतना पुश करता है कि तुम संदेशा दो सबको, बाबा का परिचय दो, इसीलिए तो इतना पुश करता है, नहीं तो क्यों करें, सभी की ज्योति जगाओ, बेचारे तड़फ रहे हैं चिल्ला रहे हैं। हम साकार बाबा को देखते थे, बाबा रात रात बैठ करके योग करते, बाबा से कभी पूछते थे बाबा आपको नींद नहीं आती है क्या, नहीं बाबा को नींद नहीं आती है, क्यों नहीं नींद आती है, बाबा कहता था देखो बांधेली गोपिकाएं हैं उनकी दर्द भरी आवाज सुनाई दे रही, भगत है उनकी पुकार सुनाई दे रही, बाबा कहता है तुम भी तो मास्टर भगवान हो, तुम बच्चों को भी जो दुखी आत्माएं हैं उनकी पुकार सुनाई देनी चाहिए, भक्तों की तुम्हारे को आवाज सुनाई देनी चाहिए, परंतु किसको आवाज सुनाई देगी, जिनकी खुद की आवाज बंद होगी, जिसकी खुद की अंदर में आवाज चलती रहेगी अपनी, तो दूसरे की आवाज सुनाई देगी, जैसा अभी मैं आवाज कर रही हूँ, कोई आवाज देगा तो भी ध्यान नहीं जाता है क्योंकि मेरा ही आवाज है। तो बाबा जो घड़ी घड़ी हम बच्चों को कहता है, बच्चे आवाज से परे चले जाओ, तो अगर हम आवाज से परे नहीं जाते, आवाज से परे जाना मना अशरीरी बनना, तो अगर हम आवाज से परे नहीं जाते हैं तो दुखी आत्माओं की पुकार हमको सुनाई नहीं पड़ती, भक्तों की पुकार हमको सुनाई नहीं पड़ती है, बाबा को वो सुनाई पड़ती थी और बाबा उन आत्माओं को साकाश देते थे। तो बाबा हम बच्चों से अभी ये चाहते हैं कि जिस प्रकार साकार बाबा ने इतनी मेहनत करके थोड़े समय में इतनी ऊंची स्थिति को प्राप्त किया, तो ऐसा ही हमें भी अपनी स्थिति को कर्मातीत बनाना। और आप देखेंगे मम्मा ने भी कितने थोड़े समय में, उससे भी थोड़े समय में अपनी स्टेज को प्राप्त कर ली। बाबा हमेशा कहता था, बाबा कहता था देखो ये बाबा तो नंबर वन है परंतु तुम्हारी माँ तो प्लस वन है, क्योंकि पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, पहले राधा पीछे कृष्ण, प्लस वन हो गई। क्यों मम्मा इतनी फास्ट क्यों गई, नहीं तो आई तो कितनी छोटी थी, वो मम्मा कैसे बन गई, इतनी फास्ट कैसी चली गई, बाबा के आगे कैसे निकल गई वो, क्योंकि उसने हमेशा अपने संकल्पों के ऊपर ध्यान दिया। योग में ये बहुत आवश्यक है। बाबा शुरू शुरू में कहते थे, क्योंकि हम तो इतना ज्ञान जानते नहीं थे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, बाबा कहता था बच्चे अगर कोई उल्टा सुलटा संकल्प आता है ना, कोई हर्जा नहीं है, आप अपनी वाणी के ऊपर और कर्मों के ऊपर अटेंशन दो, संकल्प आएगा तो आपका विक्रम नहीं बनेगा। हाँ समय वेस्ट जाएगा पर विक्रम नहीं बनेगा। पर मम्मा उस समय भी बोलती थी कि आप अपने संकल्पों की तरफ ध्यान दो। आज बाबा भले आपको छूट देता है, एक समय आएगा बाबा आपको अटेंशन खींचवाएगा, क्योंकि संकल्प वेस्ट जाना माना एनर्जी वेस्ट जाना आत्मा की, संकल्प वेस्ट जाना माना समय वेस्ट जाना, क्योंकि संगम युग का समय ये बहुत बड़ा खजाना है। एक तरफ बाबा को याद करके हम अपने अंदर शक्ति भरते हैं, और वही अगर व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी शक्ति जो है वो लीक हो जाती है, खलास हो जाती है। अभी कोई पानी की टाकी है, ऊपर से भर रही है और नीचे अगर उसको होल है तो क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा ना, पानी भरेगा ही नहीं। तो एक तरफ हम बाबा को याद कर रहे हैं और दूसरी तरफ फालतू संकल्प उठा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आत्मा शक्तिशाली बनेगी, बनेगी नहीं ना। आत्मा शक्तिशाली नहीं होगी तो माया के ऊपर विजय कैसा प्राप्त करेगी। तो इसीलिए मम्मा पहले से संकल्पों के ऊपर विशेष ध्यान खिंचवाती थी कि अपने संकल्पों की तरफ ध्यान रखो, हमारे संकल्प कभी व्यर्थ नहीं चलने चाहिए, हमारे संकल्प कभी फालतू नहीं चलने चाहिए। तो ये जो संगठित रूप में हम बैठ करके योग करते हैं, इसमें इस बात का हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। जैसा देखो आप यहाँ पर आए हैं तो आपको ये पक्का कराया गया है ना कि आप 3 दिन के लिए जा रहे हैं तो मौन धारण करना, सिर्फ मुख के मौन से कुछ नहीं होगा, आपको संकल्पों का भी मौन धारण करना पड़ेगा, मुख का भी मौन हो और साथ साथ में संकल्पों का भी मौन हो। जब संकल्प भी हमारे फालतू नहीं चलते, स्टॉप हो जाते हैं, तभी हमारे में बाबा से ली हुई शक्ति जो है वो जमा होती जाती, और जब ये शक्ति हमारे में जमा होती जाएगी तो शक्ति किसके लिए चाहिए, कोई भी परिस्थिति आवे तो हम उसका सामना कर सकें, माया किसी भी रूप में आवे तो हम उसको परख के उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सके, इसलिए हमारे को क्या है, शक्ति की आवश्यकता। तो तभी हम यहाँ पर बैठते हैं, ऐसा नहीं यहाँ आप जब भी बैठो उसी समय बाबा याद रहे, अभी तो सारा समय जब आए इसके लिए है तो सारा समय हमें बाबा से बुद्धि का योग लगा करके हमारे को अपने अंदर शक्ति का स्टॉक जमा करके जाना है। जो शक्ति हम जब कर्म क्षेत्र पर जावे तो उधर हमको कम में आवे, ऐसा नहीं आते हैं तो फिर बताते हैं हम यहाँ पर आए ना मधुबन में आए, हमको बहुत अच्छा लगा, अनुभव बताते ना, हमको बहुत अच्छा लगा, हमारा बड़ा अच्छा योग रहा, हमारे को बहुत शक्ति मिली, बड़ा आनंद आया, बड़ा प्रेम मिला, ये तो मिलता ही है, स्थान से मिलेगा और क्या होगा। जिस स्थान पर जो जाएंगे, आप आग के सामने खड़े रहेंगे तो आपको गर्मा चाहिए, आप समुद्र के सामने खड़े रहेंगे तो आपको ठंडी हवाएं आएगी, तो प्रेम के सागर के पास आएंगे, शक्ति के सागर के पास आएंगे, वो तो मिलेगा ही हमको, परंतु जो मिलता है उसको हम सेव करें, उसको हम अपना बनावे, अपना बना करके फिर विश्व कल्याण में लगावे। क्योंकि आप अपने से प्रश्न पूछो, बाबा ने हमको अपना क्यों बनाया, बाबा ने हमें क्षुद्र से ब्राह्मण क्यों बनाया, बाबा ने हम ब्राह्मणों को जन्म ही दिया विश्व सेवा के लिए, ब्राह्मण अर्थात ही विश्व कल्याणकारी, तो हमें सारे विश्व का कल्याण करना है, इसके लिए बाबा ने हमको जन्म दिया। तो जब सारे विश्व का कल्याण करना है तो उसके लिए हमारे पास इतनी शक्तियां जमा होनी चाहिए, इतना ज्ञान का भंडार हमारे पास जमा होना चाहिए। जब ज्ञान का भंडार हमारे पास जमा होता है तो फालतू बातों के लिए हमें टाइम नहीं मिलता, फुर्सत ही नहीं मिलेगी आपको फालतू बातों के लिए, सोचने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, बोलने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलेगी। बाबा बोलता है देखो बाबा ने सब सिखाया, जैसा हम देखते हैं, माँ बच्चे को बोलना सिखाती है, माँ बच्चे को चलना सिखाती है, माँ बच्चे को खाना सिखाती है, तो शिव बाबा भी हमारा पिता भी है ना, माता भी है हमारी। तो बाबा ने हम बच्चों को बोलना सिखाया, पर क्या बोलना सिखाया, ये सिखाया, ज्ञान बोलना सिखाया, क्या सुनना है ये भी सिखाया, क्या सुनना है तो क्या सुनना है, सिर्फ तुम बच्चों को कानों के द्वारा बाबा का ज्ञान ही सुनना है, फालतू बातें नहीं सुननी। इसीलिए हमारा एक चित्र है ना, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा बोलना मना क्या हो गया, देह के लिए बोलना मना क्या हो गया, बुरा हो गया, फालतू बोल। तो जितना हम अपनी वाणी के द्वारा फालतू बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, उससे क्या होता है, हमारी डबल शक्ति जाती है, बोलने से शारीरिक थकावट भी होती है और साथ साथ में मानसिक थकावट भी होती है, आत्मा की शक्ति भी खलास होती है अगर फालतू बोलेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा क्या करो, कम बोलो, कम बोलो, पर कैसा बोलो, हाँ ऐसा नहीं, कभी कभी कोई बोलते बहन जी हम ना बहुत कम बोलते, हम कभी बोलते ही नहीं है, घर में भी हम कभी बात नहीं करते, बाबा बोलते हैं ना कम बोलो, हम कभी बात नहीं करते, कभी एकाध बारी हम बोलेंगे, पर ऐसा बोलेंगे सामने वाला जन्म भर रोता रहे, नहीं बाबा ने ये नहीं सिखाया, बाबा ने कहा कम बोलो पर कैसा बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो पर कैसा बोलो, सत्य बोलो, क्योंकि तुम सत्य बाप के बच्चे हैं, इसीलिए तुम्हारे मुख से क्या निकलने चाहिए, सत्वचन निकलने चाहिए। जिसका ही गायन देखो भक्ति मार्ग में गुरुओं के लिए कहते हैं सत्वचन महाराज, आप जो बोलेंगे वो सत्य होता है, झूठ है पर बोलेंगे सत्य। पर बाबा ने यहाँ हम बच्चों को सत्य बोलना सिखाया, कम बोलना सिखाया, हमारे को मीठा बोलना सिखाया। तो माँ ने हमारे को लौकिक माँ ने बोलना तो सिखाया, परंतु ये जो बातें ये गुण है ये किसने सिखाया, हमारे इस पारलौकिक माता पिता ने आके हमको सिखाया, ये सिखाने के लिए उसको आना पड़ा। फिर सुनने का भी बाबा ने बताया, तुमको फालतू बातें सुननी नहीं है, फालतू बातें सुन, सारा दिन कान को मोबाइल लगा हुआ है, इधर की बात उधर की बात उधर की बात, ये क्या है, इसमें एनर्जी क्या होती है आत्मा की, वेस्ट होगी ना, टाइम वेस्ट होगा ना। हम एक दो के साथ इतनी बातें करते हैं जो हमको खुद के साथ बात करने की फुर्सत ही नहीं मिलती है, औरों के साथ बातें करते हैं, कभी हमने ये सोचा है कि मुझे खुद के साथ भी बात करनी, कभी बैठ के अपने साथ भी तो बात करें ना हम, जैसा बाबा के साथ बातें करना हम सीखते हैं वैसा खुद के साथ बात करना भी सीखना चाहिए, कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या पुरुषार्थ हमारा चल रहा है, ये कौन चेक करेगा बताओ। बाबा जो घड़ी घड़ी चार्ट बोलते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, चार्ट क्या लिखना है, कैसा लिखना है, कुछ नहीं है, बाबा कहते हैं तुम देखो, तुम जो बोलते हैं उससे सबको सुख मिलता है, तुम जो करते हैं ऐसे बाबा के कर्मों को तुम शो करते हो, तुम्हारे को देख के और फॉलो कर सकते ऐसे कर्म करते हो, क्या है चार्ट, यही तो है ना। तो बाबा ने हम बच्चों को सब कुछ आकर के सिखाया है, अटेंशन हमारा खिंचवाया है, हमारे कर्मों के ऊपर अटेंशन खिंचवा कि फालतू बातें तुमको सुननी नहीं है। कोई कोई कहता है बहन जी हम कभी फालतू बात नहीं करते। अच्छा फालतू बात नहीं करते हैं, कोई आके फालतू बात सुनाएगा तो हम क्या करेंगे, क्या करें आप बताओ? कोई फालतू बोले तो हम क्या करें? आप उसको बोलो चुप करो तो उसको गुस्सा लगेगा कि ये क्या है, हम इसको सुना रहे ये सुनता नहीं है, तो क्या करें उस समय पर? कान बंद कर डालें ऐसा? अभी ये आप हमेशा ध्यान में रखो। आज देखो कितना ऊंचा ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान से ऊंचा और कोई ज्ञान है? ईश्वरीय ज्ञान ये ऊंचे से ऊंचा ज्ञान है। परंतु अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं तो आप उसको दे सकते हैं? अगर कोई दे सकता है तो हाथ ऊपर करो। कोई नहीं दे सकता। अगर सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं है तो इतना ऊंचा ज्ञान भी हम किसी को दे नहीं सकते, ठीक है? फिर जब इतना ऊंचा ज्ञान सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं है तो हम दे नहीं सकते हैं, तो अगर मेरे को फालतू बातों का इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे को कोई दे सकता है फालतू बातें जो है ही फालतू? तो अगर मेरे साथ कोई फालतू बात करता है इसका अर्थ क्या हुआ? मेरे को सुनने का इंटरेस्ट है, इसीलिए उसकी हिम्मत है मेरे सामने आके फालतू बातें करने की। आज जानकी दादी के साथ कोई बात करके देखो फालतू कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, हिम्मत होगी किसी की? तो इसीलिए ये भी बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है, बच्चे बुरा मत सुनो, बुरा मत सुनो माना जिस चीज में आत्म उन्नति नहीं होती है वो बातें नहीं सुनना। अगर कोई सुनाता होवे तो आप ध्यान ही नहीं देंगे तो वो आएगा ही नहीं आपको सुनाने के लिए, परंतु आप बैठ के इंटरेस्ट से सुनते, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर उसका क्या हुआ, फिर इसका क्या हुआ, फिर उसका क्या हुआ। हमारी माताओं के पास थोड़ी ज्यादा फुर्सत होती है, ऐसा है ना? भाई थोड़े बिजी रहते हैं, भाइयों को भी होती है पर कम होती है, पर माताओं को जरा ये बातें सुनने में ज्यादा फुर्सत होती है। तो यहां से ये पक्का करके जाओ भट्टी से कि हमारे को कभी भी किसी से फालतू बात करनी नहीं है, हमारे को किसी से फालतू बात सुननी नहीं है, हमारे को फालतू देखना नहीं है, हमारे को फालतू बोलना नहीं है। देखो कितनी शक्ति जमा हो जाएगी, बहुत शक्ति से हो जाएगी हमारी, तो वो हमारी विश्व कल्याण में लगेगी। तो बाबा हम बच्चों को ये सब बातें सिखाता है आकर के प्रैक्टिकल। तो अभी आप यहाँ पर आए हैं, मैं समझती हूँ अमृत वेला तो बाबा के सब बच्चे करते ही होंगे, हाँ करते हैं नहीं करते हैं? जो अमृत वेले रोज उठते हैं वो हाथ ऊपर करो देखो, यहाँ नहीं घर में भी, हाँ मेजॉरिटी उठते हैं, कोई कोई नहीं उठते। आज से फिर चालू करना जो नहीं उठते हो गए। अभी बीती सो बीती, बाबा कहता है ये दुनिया नहीं जीती, हाँ अभी आगे के लिए धरो कदम। अभी हम देखते हैं, एक तो भट्टी से शक्ति भर के जाना है, दूसरा अपनी शक्ति को कभी लीक नहीं होने देना, ये पक्का कर लेना, ठीक है? अपने समय को वेस्ट नहीं करना, सदैव सफल करते रहना और सफलता जीवन में प्राप्त करना। अभी दूसरी बात हम देखते हैं, बाबा जो घड़ी घड़ी हम बच्चों को अमृत वेले के लिए कहता है कि बच्चे अमृत वेले की तरफ ध्यान दो। अभी अमृत वेले का इतना महत्व क्यों? अमृत वेला माना जिस समय रात पूरी होती है और दिन चालू होता है, संगम है ना वो भी, रात पूरी होती है और दिन चालू होता है, उस समय का बड़ा महत्व है, भक्ति मार्ग में भी उसका बड़ा महत्व है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। कोई भी कार्य कहेंगे शुभ कार्य करना है ना, ब्रह्म मुहूर्त पर वो कार्य करो, तो ब्रह्म मुहूर्त अर्थात वो समय पर जो दूसरे लोग हैं वो सोए पड़े होते हैं, सब सोए होते हैं, अभी 3 बजे से 5 बजे तक कहां लोग उठते हैं, उस समय तो उनको नींद लगी हुई होती है, गहरी नींद में सोए पड़े होते हैं, तो इसलिए वातावरण क्या होता है, आप ही शांत हो जाता है, वाइब्रेशन सारे कलास हो जाते, तो शांत वातावरण होता है। तो ऐसे शांत वातावरण में अपने ब्रह्म लोक में जाना बहुत इजी होता है। कोई भी संकल्प हमारे संकल्पों को टकराते नहीं। तो उस ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर जब हम उठ कर बाबा को याद करते हैं तो हमारे को वातावरण का भी सहयोग मिलता है और हम सहज बाबा के पास जाकर के बाबा के साथ बातें कर सकते, बाबा से मिलन मना सकते। और देखो बाबा सारे कल्प में एक ही बारी आता है या दो बारी आता है? एक ही बारी आता है ना। तो एक ही बारी आता है, थोड़े समय में बाबा को बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं। सारी सृष्टि को चेंज करना कितना बड़ा कार्य, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना, हाँ तड़पती हुई आत्माओं को ठिकाने लगाना, उसको तो बहुत काम। तो कोई कितना भी आज बड़ा आदमी हो जाएगा, बड़ी पोस्ट वाला हो गया, बड़ा पोजीशन वाला हो गया, फिर भी वो क्या करता है, अपनी फैमिली के लिए अलग समय जरूर रखता है। ऐसा थोड़े उसमें लग जाएगा, उसमें लग जाएगा तो लोकप्रिय बनेगा पर अपने घर वालों का प्रिय थोड़ा ही बनेगा, उसको टाइम निकालना ही पड़ेगा ना। तो बाबा को भी विश्व कल्याण करना है, सारे विश्व को परिवर्तन करना है, परंतु बाबा खास विशेष हम बच्चों के लिए अमृत वेले का टाइम अलग रिजर्व करके रख कि मेरे जो ब्राह्मण बच्चे हैं, जिन्होंने मेरे को पहचाना है, जिन बच्चों ने मेरे को जाना है, उन बच्चों को, बच्चों के लिए खास अमृत वेला है। उस समय तुम अपने दिल की कोई भी बात मेरे को सुना सकते हो, उस समय तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम है मेरे को बता सकते हो, उसका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। उस समय तुम्हारी कोई भी मुराद है वो हासिल हो सकती। तो बड़े आदमी की तो अपॉइंटमेंट ली जाती है ना, तो बाबा ने हमको अपॉइंटमेंट का समय दिया हुआ। परंतु कभी कभी क्या होता है, मेजॉरिटी तो उठ करके बैठ जाते हैं, अमृत वेले उठ के बैठ जाएंगे, पर उठ के बैठने के बाद उस समय क्या होता है, अभी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा अच्छा बोलना चाहिए हमेशा नहीं। देखो बैठने की भी विधि होती है, हर एक कार्य की विधि है। हमारे भाई बहन क्या करते हैं, अमृत वेले आंख खुलती है क्योंकि अभी इतना समय से योग किया हुआ है, बाबा से पालना ली हुई है, इतना ज्ञान सुना हुआ है, बाबा की रोज मुरली सुनते हैं, सब कुछ ये सुनते हैं, तो सवेरे आंख तो खुल जाती है, उठते ही फिर बैठ करके बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग वहीं बैठ जाएंगे, उठ करके मुंह भी धोने का नहीं, उधर ही बैठने का, जहाँ सोए थे सारी रात उधर ही बैठ जाने का और उधर ही बाबा को गुड मॉर्निंग करने का, फिर याद करना चालू करने का बाबा से, और बैठे बैठे कभी लंबा हो जाने का मालूम भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो बिस्तरे में हमारे वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन उसके अंदर है नींद के आलस। इसीलिए विधि है। देखो भक्ति मार्ग में भी पूजा का खास कमरा बनाते हैं, किसी के पास कमरा नहीं होगा ना, छोटी जगह होगी तो छोटा एक मंदिर, छोटा सा कोई एक बॉक्स ही रख देंगे अलग, और उसके आगे बैठ के जाके पूजा करें। तो हम लोग जब भी बाबा भगवान जिसको हमने पहचाना है, जिसको हमने जाना है, जो हमको 21 जन्मों का वर्षा देता है, जो जिसके साथ हमारे सर्व संबंध है, जो हमारा प्यारे से प्यारा है, उसको याद करने की कोई तो विधि होनी चाहिए। विधि के बिगैर कभी भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। दुनिया में रिद्धि से सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं और यहाँ पर विधि के द्वारा हमें सर्व सिद्धियों की प्राप्ति हो। इसीलिए आप अमृत वेले उठो, भले बड़ा घर नहीं होवे, दिल्ली में तो फिर भी होते, हमारे पास बम्बई में तो बहुत छोटे छोटे घर है, जगह की बहुत शॉर्टेज है, दो ही जगह हैं, एक तो आसमान में चले जाओ नहीं तो समुद्र में चले जाओ, और जमीन नहीं मिलेगी आप। इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं ना, क्या करेंगे, नहीं तो जमीन नहीं होगी। तो वह छोटे छोटे घर भले हो गए, परंतु आप उठो, बिस्तरे पर से उठ के उसको लपेट के रख दो अगर नीचे सोते हैं, या खटिया छोड़ दो, छोड़ करके मुंह हाथ धुलाई करो, फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होकर के फिर पीछे बाबा के साथ रूह ध्यान करो। और आप देखो अगर कोई जगह हमारी मुकर्रर हो सके तो वो जगह आप याद के लिए रखो, फिक्स करो, क्योंकि वो जगह का भी बहुत असर होता है। तो आपको बड़ा आनंद आएगा बाबा से बातें करने का। बाबा हम बच्चों का इंतजार करता है। अरे हम नहीं उठते तो हमारी खटिया भी हिलाता है। आपकी कभी हिलाई कि नहीं किसी की खटिया? जिसकी हिलाई हाथ ऊपर करो। देखो बाबा कितना काम करता है। आपने थैंक्स बोला बाबा को? हाँ, वो देखता है, अरे मैं इनको सारे वरदान देने के लिए आया हूँ, मैं इतना बड़ा वर्षा देने के लिए आई, और आराम से सोई पड़े। क्योंकि क्या है, योग भी क्या है, शांति है, और नींद भी क्या है, शांति है। तो इसीलिए बैठे 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 ऐसा झुटका मारे जो मालूम ही नहीं पड़ेगा। अरे भाई आप सोए? नहीं नहीं बहन जी, मैं तो योग कर रहा था, बहुत अनुभव हुआ, इतना अच्छा अनुभव हुआ, शांति का बात मत, बहुत अच्छा अनुभव। एक बारी क्या हुआ, एक जगह पर एक माता थी, उसका बच्चा छोटा बच्चा था बहुत वो पता नहीं क्या था बेचारे को, बहुत तकलीफ थी, सोता नहीं था, रोता ही रोता था। तो वो क्लास में लेके आई, तो योग चल रहा था, वो गोदी में लेके उसको बैठी, सो गया। ये इतनी खुश हो गई, एक घंटा बैठी रही, उसको सुला दिया नीचे, एक घंटा योग करती रही। योग पूरा हुआ तो बहन जी को जाके बोला, बोला मेरे को तो आज बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, क्या योग का क्या क्या महिमा करे योग की, कमाल है योग की, ये सोता नहीं है, सारा समय चिल्लाता है, रोता रहता है, यहाँ तो आराम से सो गया। बहन जी ने क्या बोला, उसने कहा हमारे पास तो भले भले सो जाते, ये सो गया तो क्या होगा, अच्छे अच्छे लोग सो जाते हमारे पास तो ये तो छोटा बच्चा सो गया तो कौन सी बड़ी हो तो ये हमारे को समझना चाहिए कि हम नींद का झुटका खा रहे हैं कि बाबा की गोदी का है, झूले में झूले आएगा, नींद का झुटका समझे कि हम बाबा की गोदी के झूले में झूल रहे। तो इसीलिए थोड़ा अलर्ट होकर के बैठने की आवश्यकता है, क्योंकि माया का यही धंधा है। वो भी सोती नहीं है माया, माया को नींद नहीं आती, औरों को सुलाने का काम करती, वो देखती है अभी ये ईश्वर के साथ इनकी बहुत प्रीति हो गई है और ये उसके साथ बहुत लग गए हैं, और सारा समय उससे ही एंगेज रहते हैं, आधा कलब तो मेरे से इन्होंने माल खरीद किया है और अभी मेरा माल इन्होंने बंद कर दिया लेना, उसका माल बच जाता है, क्या करेगी वो? इसीलिए आती है खास देने के लिए, दरवाजा ठोकती रहती है, आके देखूं कोई खोलता है दरवाजा। और कोई कोई हमारे भाई बहन है ना, बहुत भोले हैं, माताएं है ना, माया आ गई, माया आ गई, अरे माया को याद कैसे कर। एक माता आई हमारे साथ बाबा से मिलने के लिए मधुबन में, साकार बाबा, बाबा को बोला, बुढ़ेड़ी थी बेचारी, बोला बाबा माया ना बड़ा तंग करती है, मेहरबानी करके आप अपनी माया को बोलना मेरे पीछे नहीं पड़े। बाबा ने कहा मेरी माया है क्या? बोला हाँ बाबा, बोलना उसको मेरे पीछे नहीं पड़े। बाबा ने कहा हे माया तुम इसको नाक से पकड़ना। इतनी डर गई, बोला बाबा आप ऐसा कैसा बोलते हो, तो मेरे को अभी छोड़ेगी नहीं। बाबा ने कहा बाबा माया को नहीं भेजता है, तुम माया को बुलाती है। बोला नहीं मैंने तो कभी माया को नहीं बुलाया। बोला तुम बोलती है माया आ गई, माया आ गई। बोला हाँ, तो बोला तुम याद करेगी तो जरूर आएगी ना। आज देखो आप किसी को भी याद करेंगे तो वो व्यक्ति आके खड़ा हो जाता है ना। हम कहते हैं देखा भाई हमने आज आपको बहुत याद किया, आप आ गए, याद से याद मिलती है ना। इसीलिए माया को कभी याद नहीं करना तो माया आएगी नहीं, याद करेंगे तो वो जरूर आएगी तुम्हारे पास। तो बाबा की याद में जिस समय बैठते हैं, कभी भी बैठो, अलर्ट होकर के हमको बैठना है, क्योंकि उस समय हमारी कमाई होती है। बाबा अपना मिसाल बताते थे, आप लोगों ने भी मुरली में सुना होगा। जब भी बाबा जवाहरात का धंधा करता था तो कराची तो हार्बर था ना, बंदर था, वहां पर स्टीमर आते थे, तो रात को स्टीमर आके पहुंचते थे, ग्राहक आते थे। उस दिन भी बाबा ने कहा जब तक ग्राहक का खीसा खाली नहीं करूं तब तक उसको छोड़ता नहीं। इतना मतलब एक्सपर्ट था बाबा धंधे में, तो ऐसा थोड़े ही जिस समय ग्राहक आएगा उस समय बैठ करके अगर जो दुकानदार है वो झुटके खाएगा या सोएगा तो फिर बिक्री कैसा करेगा, धंधा कैसा करेगा। तो इसीलिए हमें भी ये देखना है कि ये कमाई का समय, कमाई के समय पर हमारे को नींद नहीं आनी चाहिए। मुरली में भी आती है, क्योंकि बाबा की मुरली बड़ी मीठी मुरली है, लोरी देता है ना, माँ है ना वो हमारी, ब्रह्मा हमारी माँ है, तो ज्ञान की लोरी देता है, तो उसमें कोई कोई फिर जरा थोड़ा झूम लेते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारी जो बातें हैं वो बाबा जो सिखाना चाहता है वो हमारे से मिस हो जाती, तो मिस होते होते फिर हमारे को बहुत घाटा पड़ जाता है। तो इस बात का अगर ध्यान रखते हम कि अमृत वेले तो भले उठते हैं, मेजॉरिटी उठते हैं, कोई थोड़े बहुत नहीं उठते हैं, तो अभी यहाँ से वो टेव करके जाना कि हमारे को उठना ही है, क्योंकि बाबा का बच्चों से मिलने का वो समय फिक्स है। फिर बाद में जब आप बाबा से मिलने को जाएंगे आपको मेहनत से मिलना पड़ेगा, क्यों में खड़ा होकर मिलना पड़ेगा, परंतु अमृत वेले तो आपको सीधा ही सीधा बाबा उसी समय मिल जाएगा। तो अमृत वेले का वैसा भी हम लोग जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो घर वाले बोलते थे माता पिता वगैरह, रात को जल्दी सो जाओ और सवेरे उठ करके पढ़ो। आप भी अपने बच्चों को बोलते होगे ना, सवेरे उठ के पढ़ो तो क्या होगा, सवेरे बुद्धि फ्रेश होती है, उस समय पढ़ा हुआ भूलता नहीं, रात को पढ़ के सो जाएंगे फिर सारा भूल जाता है, फिर वापस पढ़ो। तो वैसा ही बाबा बोलता है सवेरे जब बुद्धि फ्रेश होती है, तुम खुद फ्रेश होते हैं और नींद में से उठते हो, शांति में से उठते हो, तो शांति में जाना, अपने घर में जाना बहुत ईजी होता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी भक्ति कभी करते हैं, राम सिमर प्रभात मेरे मन, प्रभात के समय राम का नाम लिया जाता है, उस समय उसको याद किया जाता है, तो उसके महत्व को अगर हम समझ लेते हैं तो उस समय डायरेक्ट हमारा कनेक्शन क्या होता है, बाबा के साथ हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ भी जो अमृत वेला करो ना, आप बहुत अलर्ट होकर के बैठना, यहाँ तो वातावरण ही ऐसा है, आपको मदद करने वाला वातावरण है, परंतु यही वातावरण हम अपनी प्रवृत्ति में रहते हुए भी ऐसा वातावरण बनाए, तो जिससे क्या है कोई भी अशांति की भी बातें होती है ना वो निकल जाती है, और धीरे धीरे घर का वातावरण भी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो बाबा कहता है ना, तुम बच्चों को सारी दुनिया को स्वर्ग बनाना। दुनिया स्वर्ग कैसे बनेगी, एक एक घर जब स्वर्ग बनेगा तभी तो दुनिया स्वर्ग बनेगी, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, हम बच्चों के द्वारा स्टार्ट होगा ना, आप लोगों के द्वारा स्टार्ट हो। तो घर को स्वर्ग बनाना है, शांत बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है, योग की ज्वाला को सदैव प्रज्वलित करके रख, और यहाँ जितना दो तीन दिन जो भी आप रहने वाले हैं उसमें पूरी पूरी कमाई करना, उसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होवे, बुद्धि कहाँ भी हमारी जावे नहीं, सदैव हमारा कमाई में समय जावे और हम उसकी कमाई करके अपने साथ पूंजी लेकर के जावे, और ऐसा नहीं यहाँ से जाने के बाद फिर वापस वैसे के वैसे नहीं, वो जो शक्ति है वो शक्ति फिर वहाँ भी हमारी काम में आवे, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप पूरी पूरी क्या करना, इसका लाभ लेकर के जाना। आज देखो ये योग शिविर वाले भी आते हैं घर में, तो सूर्यवंशी होते हैं 8 बजे उठने वाले, परंतु यहाँ आने के बाद यहाँ का वातावरण ही ऐसा है, हम देखते हैं 4 बजे आकर के सभी योग कर, अज्ञानी भी आप लोग खुद भी देखते होंगे ना, वो भी आके योग करते हैं, तो अभी वो तो जितना विचारों को जितनी ताकत होगी उस अनुसार करते हैं, हम लोगों को तो यथार्थ कैसे याद करने का है उसकी विधि बाबा ने बताई हुई है, उस विधि के अनुसार हम अगर बैठते हैं तो हमारे को बाबा के द्वारा सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, सर्व ईश्वरीय प्राप्तियां हमारे को होती है, जिस प्राप्ति से ही हम आत्मा क्या हो जाती है, शक्तिशाली बन जाती है। तो इसीलिए हमें ऐसा शक्तिशाली बनना है, और शक्तिशाली बन करके सारे विश्व को परिवर्तन करना है, ये दृढ़ संकल्प करने की आवश्यकता है। संकल्प होता है परंतु संकल्प में क्या चाहिए, दृढ़ता चाहिए, संकल्पों का खेल है और कुछ नहीं। तो इसीलिए संकल्प ये एक तीली का काम करती है, आज आप एक तीली अगर लगा दो माचिस की तो क्या हो जाता है, सारी बिल्डिंग के बिल्डिंग जल जाती। तो उसी प्रकार एक संकल्प क्या नहीं कर सकता है। कहते हैं ना, ब्रह्मा को संकल्प आया, नई दुनिया रच डाली। एक संकल्प का ही खेल है। तो ब्रह्मा को संकल्प आया, नई दुनिया रचे। हम ब्राह्मणों को संकल्प आता है, हम अपने जीवन को नया बना देवे, हम अपने जीवन को योगी बना देवे, श्रेष्ठ बना देवे, तपस्वी बना देवे। तो बना दिया, कितनों ने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए। अभी हमारा जीवन श्रेष्ठ बनाए उसका क्या प्रूफ है, जब हम दूसरों का जीवन श्रेष्ठ बनावे तो यही उसका प्रूफ है। बाबा ऊंचा है तो बाबा ने हम बच्चों को भी वो ऊंचाई सिखाई हुई है। तो इसीलिए ऐसा। और ये दृढ़ संकल्प सिर्फ तीली नहीं है, ये एक टिकट भी है। आप देखो, दृढ़ संकल्प करते हैं मुझे परम धाम की यात्रा करनी है, जैसा आपको टिकट मिल गया, आपकी जर्नी चालू हो। संकल्प किया ना, संकल्प ही खेल है। इसीलिए हमारे को संकल्पों का बहुत बहुत ध्यान रखना है। हमारे संकल्प कभी भी वेस्ट नहीं जावे, परंतु सदैव बेस्ट रहे। ओम शांति।
मजा आ गया न। आदरणीय दीदी जी ने सबकी बुद्धि की तिजोरी को रत्नों से भर दिया और आने वाले 3 दिनों के लिए हमारी मानसिकता को लाइन अप किया है। दृढ़ता से पुरुषार्थ करना है, अमृत वेला कोई भी हालत में मिस नहीं करना है, हर एक क्लास में समय पर हाजिर रहना है। व्यर्थ बातचीत का तो यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता है, और अमृत वेले माया को कैसे हराना है वो भी विधि बड़े सुंदर तरीके से हमको दीदी ने समझाई। और इस भट्टी में क्या करने आए हैं, क्या यहाँ से लेकर के जाएंगे, वो भी हमने बहुत सुंदर तरीके से आदरणीय दीदी जी से सीखा है। अभी तो ये आपका स्वागत सत्र है, कुछ ही देर में मधुरवाणी ग्रुप के भाई भी हमारे बीच आएंगे और उसके बाद यहाँ की व्यवस्था को देखने वाली आदरणीय शशि दीदी जी भी हमारे बीच में आएंगे और आप सबका स्वागत करेंगे। अभी कुछ मिनट बीच में हमारे पास बाकी हैं, अगर दीदी जी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, अमृत वेला से संबंधित या जो भी अभी सुना उससे संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हो तो दीदी जी हमारे मध्य विराजमान है, मौके का फायदा ले सकते हैं। कोई पूछना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करें। दीदी कहते हैं प्रसन्न चित्त हैं, इसलिए इनके पास कोई प्रश्न नहीं। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। अमृत वेला उठते हैं तो ज्यादातर क्या होता है, कभी टांग थक जाती है, कभी कोई मच्छर काटता, तो क्या होता है आगे आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, उसका क्या हल है?
देखो, कभी टांग दुखेगी, कभी सिर दुखेगा, कभी पेट दुखेगा। ये दुखेगा उसी समय जिस समय कमाई करनी होगी, उसके बाद नहीं दुखेगा। कमाई के समय दुखता है। ये माया ऐसा ही आके प्रवेश करती हो तो निराकार है ना, कैसा आएगी, ऐसा ही आएगी। कभी मच्छर के रूप में आ जाएगी, ऑडोमॉस लगा के रखो ना, मच्छर आता होगा तो। मैं खुद भी ऑडोमॉस, मेरे को बहुत मच्छर हैरान करते हैं, मैं हमेशा ऑडोमॉस लगा के बैठती हूँ। बाकी तो टांग दुखे, टांग को सीधा कर दो भैया। ऐसी बात है, ये इसलिए होता है क्योंकि सारा दिन हमारा दिनचर्या के ऊपर ध्यान नहीं होता। सारा दिन अटेंशन न होने के कारण, और अमृत वेले फिर बैठते हैं तो वो अटेंशन नहीं रहता है। अगर सारा दिन लिंक बनी रहे बाबा के याद की, और रात को सोने के समय आप बाबा को गुड नाइट करके सो, 10 मिनट बाबा को याद करके सो, अपनी सारी दिनचर्या को चेक करके फिर समाप्त करो, तो फिर क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं हो। अभी तो बाबा ने, अभी नजदीक की मुरली में ही बाबा ने कहा, तुम बच्चे ये प्रैक्टिस करो कि हम अभी अभी बाबा के साथ परम धाम से आए, अभी अभी आए हैं, 5000 बरस हो गए, फिर जाना तुमको मुश्किल लगेगा, परंतु अभी अभी हम बाबा के साथ ही सृष्टि के ऊपर अवतरित हुए हैं, इस तन में हम आए हुए, अभी आए हैं ना, बाबा के साथ आए हैं हम। अगर ये बात बुद्धि में रखेंगे तो एक सेकंड में आप ऊपर चढ़ जाएंगे, और अशरीरी बन जाते हैं तो फिर टांग वांग नहीं दुखती है, परंतु जब तक शरीर से डिटैच नहीं होते हैं तो कभी टांग दुखती है, कभी हाथ दुखता है, कभी ये तो सब चलता रहता है कुछ न कुछ। तो उसके लिए अशरीरी बनने की हमको प्रैक्टिस करनी है, दिनचर्या के ऊपर ध्यान देना है, और रात को सोने के समय भी हमारे को अपनी दिनचर्या को चेक करके बाबा की याद में सोना है। इसलिए कहा जाता है अंत मते सो गते, तो हमारे दिनचर्या की वो अंत होती है जब हम सोते हैं। ब्रिजेंद्रा दादी ने एक बार ही हमारे क्लास में ये सबसे प्रैक्टिस कराई थी, बहुत अच्छी सुंदर प्रैक्टिस है। जब ये आप सोने को जाते हैं तो उस समय ये अपने साथ प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न होकर के बाबा की गोदी में जाके विश्राम कर रही। आप ये थोड़ा दिन प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको झटका लगेगा एकदम, जैसा मैं जा रही हूँ और एकदम इतनी थोड़ा ही समय सोएगे, समझो बाबा कहते हैं ना अज्ञानी 6 घंटा सोते हैं, तुमको 3 घंटा नींद भी बहुत हो जाती। तो अशरीरी बनकर के अगर हम विश्राम करते हैं ना, तो सवेरे उठते हैं तो फिर उसी संकल्प से उठते हैं, तो अंत के सोने की स्थिति का आधार अमृत वेले के ऊपर होता है। जितना जितना हमारी सोने की स्थिति अगर उस समय बाबा याद है, अशरीरीपन की स्थिति है, तो उठते आंख खुलते भी हमारी वो स्टेज रहती। अगर अंत के समय वो स्टेज नहीं रहेगी तो फिर अमृत वेले भी नहीं होता है, और सारी दिनचर्या की तरफ अगर ध्यान नहीं होता है तो रात को सोने के समय वो स्टेज नहीं बन सकती है। इसीलिए हमको लिंक बना करके रखने की है, याद की बाबा की, बाबा के साथ सर्व संबंध है ना, वो हमारा बाप है तो बाप के रूप में याद किया, टीचर है तो वो हमारा टीचर है, हमको पढ़ा रहा है उस रूप में उसको याद किया, पढ़ाई को पढ़ा, मुरली के साथ भी इतना प्यार चाहिए हमारा, वो सतगुरु है सारा दिन उसका महामंत्र याद किया। तो ऐसे अलग अलग संबंधों से अगर हम सारा समय याद करते रहते हैं तो हमारी लिंक बनी रहती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को एक ही प्रकार की कोई चीज होगी ना, अभी समझो रोज अब अगर आप दाल भात खाते रहेंगे, दाल और चावल, तो आपको कंटाला आ जाएगा, ये क्या है, रोज 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 वही बनाते रहते, वही खाते रहते, परंतु वैरायटी बना बना के खाते हैं, जैसा खाने में वैरायटी चाहिए वैसा याद में भी वैरायटी रीति से अगर याद करते हैं ना, तो याद क्या होती है, हमारी कंटिन्यू रहती है। तो अमृत वेले उठते हैं तो भी एकदम फ्रेश रहते हैं, परंतु अगर रात को सोने के समय स्थिति अच्छी नहीं होगी, आप टीवी देख के सो लिया, फालतू बातें करके सो लिया, तो फिर आपकी सवेरे स्थिति अच्छी नहीं बन सकती। इसीलिए अंत मते सो कहते, दिनचर्या के अंत को अच्छा बनाओ तो आपकी आदि भी अच्छी हो जाएगी उस, और आदि अच्छी होगी तो सारा दिन अच्छा होगा। ये तो हमारे भारत में हरेक कोई बोलता है ना, कभी किसी को दिन खराब जाता है, कहते पता नहीं आज किसका मुंह देखा, बोलते हैं ना, बोलेगे पता नहीं कौन आया था मेरे सामने, किसका मुंह देखा, आज सारा दिन मेरा बेकार गया। बाबा कहते हैं तुमको किसी का भी मुंह नहीं देखना है, मेरे को ही देखना, दिल कहे तुझे बाबा देखता रहूंगा, तो बाबा को ही देखते रहो और किसी को देखना ही नहीं, फिर देखो तुम्हारा दिल कैसा दिन कैसा जाएगा। हाँ, शीशा देखने की क्या जरूरत है, ज्ञान का शीशा देखो। ठीक है भाई, कर सकते नहीं कर सकते, रात को आप अगर बाबा की याद में सोएंगे ना आपको बहुत मजा आएगा। अब बोलिए क्या बोल।
अभी सेवा की ड्यूटी भी है और आपकी क्लास भी बहुत अच्छी लग रही है, बैलेंस कैसे बनाऊं?
अभी वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, मैं कैसा बोलूं। दोनों भी करना पड़ता है ना, सेवा भी करो और ये भी करो। अगर सेवा बाद में कर सकते हैं तो बाद में करो ना।
हफ्ता 10 दिन तो बहुत अच्छा उमंग उत्साह चलता है, अच्छे से अमृत वेला कर देते हैं, फिर उसके बाद बोरियत सी लगने लग जाती, छूटने लग जाता है, उसका क्या कारण है?
8-10 दिन अच्छा चलता है। कभी बाबा हमेशा कहते थे साकार बाबा। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं बाबा, जिस समय उनको बाबा की मुरली सुनते हैं ना सामने बैठ करके, इतना नशा चढ़ता है, इतना नशा चढ़ता है, 180 डिग्री पारा चढ़ता है। दरवाजे के बाहर निकलते हैं सोडा वाटर, सोडा वाटर मालूम है ना? आप सोडा वाटर की बाटल खोलेंगे ना, फां करके ऊपर आएगा, 1 सेकंड में ड्राउन हो जाए। तो ऐसी वास्तव में हमारी अवस्था नहीं होनी चाहिए। उसके लिए अपनी अवस्था की तरफ ध्यान देना पड़ता है। अगर हम अंतर्मुख होकर के खुद को चेक करते रहते हैं, अपनी तरफ अटेंशन देते हैं, तो फिर अवस्था ऐसी एकदम बहुत उमंग में आए और एकदम निराश हो गए, एकदम उदास हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो जिस दिन से बाबा के पास आए, उस दिन से हमारे को जैसी हमारे को नशा चढ़ा, वो आज तक वैसा ही नशा है, बड़ा है, कमती नहीं, और हो नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं कोई कमती का। ये अपने ऊपर मदार होता है, हम लूज रहते हैं, लूज होने के कारण ऐसा होता है। परंतु अगर मुझे ये मालूम है कि मेरे को कौन मिला है, मेरा साथी कौन है, मेरा साथी स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, फिर क्या है? ये क्या चलते चलते कोई समस्या आती है, कोई बात आती है, उसको देख करके ढीले पड़ जाते हैं। परंतु वो समस्याएं हमारे को आगे बढ़ाने के लिए है। ये जो भी रोडे हैं, ये हमारे को ये तूफान नहीं परंतु तोहफा है। अगर ये हम ध्यान में रखते हैं ना, कितनी भी बड़ी बात आती है उसको देख करके हम आगे ही बढ़ते जाते, बोर बोर नहीं होते। आज बरसों से एक दो के साथ रहते हैं तो ऐसा थोड़े बोलते हैं, हम तुम्हारे साथ रह के बोर हो गए। अगर कोई सजनी साजन को कहे मेरे साथ रह के, तेरे साथ रह के मैं बोर हुई, वो लात मारेगा, बोलेगा गेट आउट। तो हमारा वो साजन है, हम आत्माएं सब उसकी सजनियां हैं। तो उसके साथ रहने से हम कभी बोर हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल बात है, ये नहीं मान सकते कभी। परंतु हम कभी साथ भूल जाते हैं, कभी उसके पास रहना भूल जाते हैं, खुद को अकेला समझते हैं। इसीलिए क्या होता है, अकेला समझने के कारण छोटी छोटी बातें हमारे को बहुत बड़ी लगती, विकराल रूप लगता है उसका। परंतु अगर सदैव सर्वशक्तिवान को साथ रख के चलते हैं तो कभी भी हमारे को ऐसा नहीं होता। इसीलिए बाबा कहता है अकेले नहीं रहना, माया ये डाकू है, अकेला देख करके ही आके लूटती है। इसीलिए सदैव अपने को शिव शक्ति समझ करके चलो, बाबा के साथ साथ कंबाइंड समझ के चलो, तो कभी भी आपकी स्थिति नीचे ऊपर नहीं हो सकती। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, रियलाइज करना हो। जैसा हम लोगों ने ये रियलाइज किया, आप अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। परंतु मुझे ये अनुभव हुआ कि मैं इस देह से भिन्न हूं, ये देह मेरा वस्त्र है, ये रियलाइज हुआ ना हमको, मेरी रियल आई के द्वारा मैंने ये अनुभव किया, तीसरे नेत्र के द्वारा, ज्ञान के नेत्र के द्वारा मेरे को ये समझ में आ गया कि ये देह जो है ये सिर्फ साधन है और इसको चलाने वाली मैं आत्मा। तो ये जब रियलिटी में मेरे को अनुभूति होती है, अनुभव होने के बाद हम उस स्थिति में स्थित हो सकते हैं। सिर्फ समझने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ समझो तुम मैं आत्मा हूं, समझने से क्या होगा, मेरे को रियलाइज होना चाहिए ना। आप आज किसी को भी आत्मा का पाठ पढ़ाते हो, फिर आप उससे पूछते आपको समझा आप कौन है, हाँ समझ में आया बहन जी मैं आत्मा हूँ। अच्छा मैं आत्मा हूँ, फिर आत्मिक स्थिति में टिक सकते हैं क्या? नहीं टिक सकते। जब ये रियलाइज होता है कि मैं आत्मा हूँ तो क्या होता है, हम आत्मिक स्थिति में खुद भी टिकते हैं, सामने वाले को भी आत्मा देखते हैं, आत्मा देख के व्यवहार कर सकते।
तो रियलाइज से ये फायदा होता है, सिर्फ समझने से देखने से कुछ नहीं होता, ये अंतर है बस।
कैसे वो रियलाइज होता, कैसे
रियलाइज होता, कैसे आप कौन है ये बताओ? नहीं नहीं आप कौन है?
कहते ये तो पता है मैं आत्मा हूँ, पर वो आत्मा का अनुभव कैसे होता है?
आप आत्मा है ये आपको पता है, आप कौन बोलती है? आत्मा बोलती है। देखती कौन है? आत्मा देखती है। आत्मा चली जाती है तो क्या होता है? तो फिर क्या हुआ ये? तो आत्मा चली गई तो क्या हुआ? शरीर कुछ कर सकता है? तो सब कर्म करने वाली कौन हुई? आत्मा हुई या शरीर हुआ? आत्मा हुई ना, तो आप कौन हुई है? आप कौन हुई है? शरीर हुई है, आत्मा हुई है? आत्मा हुई है ना, फिर यही तो है अनुभव करना। और जो आप है वो वास्तविक अपने को देखना, अपने को अनुभव करना, ये तो रियलाइज है ना। वास्तव में अनुभव किया ना हम क्या आत्माएं हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। सब गीत गाने वाले आए आपका स्वागत करने के लिए आज।
बहुत अच्छा, आपस में रूरिहान हुई और उससे समीपता की फीलिंग और ज्यादा आई। अच्छे अच्छे प्रश्न भी पूछे, मच्छर काटे तो टांग दुखे तो टांग और मच्छर दोनों से न्यारे होना पड़ेगा। दीदी ने बहुत अच्छा समझाया कि बुद्धि को देह से न्यारा रात से ही करके रखो तो सुबह को शरीर और प्रकृति तो अपना धर्म निभाएंगे। शरीर का धर्म है कभी दुख ना कभी सुख ना, मच्छर है प्रकृति की चीज है, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी मच्छर, लेकिन देह से न्यारी स्थिति फिर भी इन चीजों से उपराम होकर बाबा के मिलन का अनुभव कराती रहेगी। तो न्यारेपन का अनुभव करना, अभ्यास करना, वो अधिक महत्वपूर्ण है। दीदी ने बहुत अच्छा स्पष्ट किया। और विजुअलाइज करना एक स्टेप है, रियलाइज उससे नेक्स्ट स्टेप है। विजुअलाइज करना जैसे अपने पिताजी का फोटो देख लेना, लेकिन रियलाइजेशन है जिसमें हमें पता चलता है ये मेरे पिताजी हैं, मुझे प्यार करते हैं। ऐसे विजुअलाइज करना यानी अंदर से बाबा के संबंधित चित्रों का निर्माण करना, लेकिन उसमें मेरेपन की फीलिंग लेना, गुण और शक्तियों और संबंधों का अनुभव करना, ये रियलाइजेशन होती है। बाकी आत्मा का तो दीदी ने इतनी सुंदर वार्तालाप करके मैं समझती हूँ भाई का चेहरा खिल गया है, बहुत स्पष्ट हो गया है एकदम। मैं हूँ ही आत्मा, ये निश्चय ही सबसे बड़ी चीज है। और निश्चय से ही आगे अनुभूति की सीढ़ियाँ हमारी जो है वो शुरू होती है। तो थोड़ा सा दिनचर्या के संबंधित हम बात करते हैं। ये तो दीदी ने सबको पक्का कराया है बहुत अच्छा, और मैं समझती हूँ हरिनगर के भाई बहने इस बात में नंबर वन लेंगे। जो सब सारे मधुबन में ये कहें कि इस ग्रुप के आने से जितनी साइलेंस हुई है उतनी और कभी नहीं हुई थी। वन टू ऑल, सभी एकदम कंप्लीट साइलेंस में रहेंगे, पूरा मौन। यहाँ बात करने का कोई मतलब नहीं। ज्यादा बात कई बार होती है जब हॉल से निकल करके हम अपने साथी को ढूंढते हैं, चप्पल के साथ साथ फलाना फलानी बाहर निकले या नहीं निकले, भोजन पे चले कि पानी पिए कि कमरे में चले, कोई कन्वर्सेशन, कोई सहयोगी साथी नहीं। ये तो साकार बाबा की भूमि है। आप थोड़ा सा भी संकल्प से आवाहन करें यहाँ से उठते हुए, बाबा चले जी बाबा, फिर साथ में बाबा चल रहे हैं, बाबा भोजन पे चले, बाबा उत्तर देगा कि बाबा कमरे में चले, जहाँ बाबा ले चलो। यहाँ तो साकार ममा बाबा का हाथ पकड़ पकड़ के चलना। और ये मास तो वैसे भी जून मास, जून मास में विशेष आप सब यहाँ पधारे हैं। मम्मा के अव्यक्त होने का मास है, मम्मा की स्मृतियाँ सब तरफ बड़े जोर से ताजा की जा रही हैं और मम्मा भी सब बच्चों की वो अव्यक्ति पालना करने के लिए बहुत बच्चों के खिंचाव में है। इसलिए हम थोड़ा भी संकल्प करेंगे तो जो आदरणीय हमारे महारथियों ने मम्मा की गोद बाबा की गोद का वो अनुपम सुख अतिन्द्रिय सुख प्राप्त किया है वो हम भी प्राप्त कर सकेंगे। तो कल से हम मम्मा की एक एक शिक्षा भी सुन करके उसको अपने दिनचर्या में ऐड करेंगे। आज हम ध्यान रखेंगे कि मम्मा की पुरुषार्थ से संबंधित दृढ़ता कितनी जबरदस्त थी जो इस भट्टी में हम यूज करेंगे। रमेश भाई जी ने एक बार अपने अनुभव में सुनाया कि मम्मा से हमने पूछा, मम्मा आप बहुतों से आयु में भी छोटे थे जब आए और दुनियावी ज्ञान भी उतना नहीं, लेकिन उस सब के बावजूद भी आप मम्मा कैसे बन गई, सबसे आगे कैसे निकल गई, तो कोई एक अपनी विशेषता सुनाओ। तो मम्मा ने कहा कोई भी आगे बढ़ता है तो कई गुणों का समावेश होता है जिससे आगे बढ़ते हैं, कई तरह का पुरुषार्थ होता है, कोई एक बात तो नहीं होती है। फिर भी रमेश भाई कहते नहीं, मैं तो वो एक बात सुनना चाहता हूँ जिसके कारण आप आगे बढ़ी। तो मम्मा ने थोड़ा गंभीरता पूर्वक सोच करके उत्तर दिया कि मेरे अंदर शुरू से दृढ़ता की विशेषता रही, जो पुरुषार्थ करना है जो बाबा ने कहा है मैंने उसको एक बार अगर अपना लिया तो मुड़कर कदम वापस नहीं रखा, उस पर एकदम अडिग अचल अडोल उन धारणाओं पर उन मर्यादाओं पर उस दिनचर्या पर मम्मा रही। तो आज जो आप ऊंचे संकल्प करेंगे, अमृत वेला, आलस का त्याग, आपस में एक भी साधारण शब्द, तो क्या कोई भी तरह की कन्वर्सेशन नहीं, सिर्फ दीदियों से कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन संबंधित बात करनी होती है, टीचर्स ने कोई सेवा की ड्यूटी टिकट की बात कुछ करना है तो वो करना होगा, अदरवाइज दृढ़ता धारण करें कि हम कंप्लीट मौन के अंदर ही रहेंगे ताकि मम्मा बाबा के साथ के अनुभव हम करते रहें। कभी कान में सुने बाबा बात कर रहे हैं मुझसे, कभी कान में सुने मम्मा बात कर रही है मुझसे, कभी फिर अपने तरफ से मैसेज भेजे, हेलो बाबा आप क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ, यहाँ बैठ भी जाए तो भी जो भी निमित भाई बहने क्लास कराएं, आप बाबा को वतन से बुला लें, बाबा इस निमित आत्मा के द्वारा मेरे कल्याण के लिए क्या करने की जरूरत है आप इनके मुख से कहलवा दीजिए। तो आप समझेंगे कि बाबा मुझे साकार में खुद पढ़ा रहे हैं और निमित रथ को सिर्फ यूज कर रहे हैं, वो जरूर हम इस बात पर अपना अटेंशन जरूर रखेंगे। और मैं समझती हूँ नोटबुक पेन सब लाए होंगे, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए और भट्टी में मिली हुई जितनी भी डायरेक्शंस है, शिक्षाएं हैं, गाइडेंस है, उसका अधिक से अधिक फायदा लेने के लिए सब नोट जरूर करेंगे। एकाग्रता बढ़ती है, उससे सुस्ती नहीं आती, रिवाइज कर सकते। क्लास पूरी होते ही आज की क्लास में कहा क्या कहा गया हम रिवाइज करके ही उठेंगे। यहाँ से हम इस भट्टी से बाबा से नंबर वन ईश्वरीय विद्यार्थी का सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे कि जो कहा जा रहा है हमने बहुत ईमानदारी से समझा है और बुद्धि में धारण किया है, क्योंकि हमारे अनुभवों का कारण जो होता है वो ज्ञान को कितना ठीक से और गहराई से पकड़ते हैं उतनी अच्छी अनुभूतियां हम कर सकते हैं। दीदी को एक हाथ की ताली से बहुत जोर से थैंक्स, दीदी थैंक्स, आपने हमें एनलाइटन किया। एकदम एकाग्र बैठेंगे।